हिमानी शिवपुरी हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसने दूरदर्शन के ज़माने से फिल्मों के दौर तक अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना फ़ैन बनाया। एक छोटे शहर की लड़की के हुनर को बखूबी उजागर करने वाली, अपनी शख्सियत की पहचान खुद बनाने वाली, आत्मविश्वास से लबरेज एक जिंदा दिल औरत, इनका चेहरा ही इनकी पहचान है। किस्सा टीवी की आज की प्रोटैगनिस्ट हैं मशहूर और मारूफ अदाकारा हिमानी शिवपुरी। देहरादून के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी हिमानी शिवपुरी कैसे ग्लैमर की दुनिया में इतना चमचमाता नाम बनी, इस पूरी कहानी को आज हम और आप बहुत करीब से समझेंगे। 24 अक्टूबर सन 1960 को देहरादून में हिमानी का जन्म हुआ था। उन दिनों देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य का एक बेहद अहम शहर हुआ करता था। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। इनके पिता एक जाने माने कवि और साहित्यकार थे। इस तरह हिमानी शिवपुरी का नाम उन दिनों हुआ करता था हिमानी भट्ट। चूंकि इनके पिता दून स्कूल में संस्कृत और हिंदी के टीचर थे, तो हिमानी की शुरुआती पढ़ाई भी देहरादून के प्रख्यात दून स्कूल में हुई थी। हिमानी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, साथ ही साथ ये स्कूल में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती रहती थी। ये भरतनाट्यम सीखती थी, साथ ही साथ सिंगिंग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी इन्होंने ली थी। पहली दफ़ा स्कूल में होने वाले नाटकों में ही इन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया था और इत्तेफाक से उन स्कूली नाटकों में ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग किया करती थी कि इनके टीचर्स इन्हें सलाह देते थे कि इन्हें फिल्म लाइन ज्वाइन करनी चाहिए, मगर उस वक्त हिमानी फिल्म लाइन ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि उस ज़माने में इनका सपना था पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना। इनके परिवार के लोग भी यही चाहते थे कि चूंकि ये पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया हैं, तो इन्हें डॉक्टर या साइंटिस्ट ही बनना चाहिए। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद हिमानी ने देहरादून से ही अपनी आगे की पढ़ाई की। हिमानी ने बीएससी में अपना ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद हिमानी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। एमएससी के दौरान ही इनकी किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि साइंस की दुनिया में जाने के बजाय हिमानी भट्ट कला और संस्कृति की दुनिया में आने की तैयारी करने लगी। हिमानी जब एमएससी कर रही थी, तभी इन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ देहरादून का एक लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। पूरे दिन बायोकेमिस्ट्री की लैब में रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शाम को जब ये अपने दोस्तों के साथ थिएटर किया करती थी, तो इन्हें बड़ा मज़ा आता था। धीरे धीरे ये थिएटर के करीब होती चली गई। एक वक्त पर जो हिमानी भट्ट पढ़ लिखकर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहती थी, वो अब थिएटर से प्यार करने लगी थी और इसी में अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाशने का ख्वाब संजोने लगी। इत्तेफाक से एक दिन इनके थिएटर ग्रुप में एनएचडी की एक वर्कशॉप हुई। उस दिन पहली दफ़ा हिमानी को पता चला कि देश में एनएचडी जैसी कोई संस्था भी है जो थिएटर की प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। हिमानी ने फैसला कर लिया कि एनएचडी ज्वाइन करने दिल्ली जाएंगी, लेकिन चूंकि ये पढ़ाई लिखाई में भी शानदार थी, तो इसी दौरान इन्हें बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई अमेरिका से करने के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिली। अब हिमानी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो दिल्ली एनएचडी जाएं या फिर और ज़्यादा पढ़ने अमेरिका जाएं। इत्तेफाक से जब ये वीज़ा का इंटरव्यू देने दिल्ली आई थी, तो तभी इन्होंने एनएचडी का भी इंटरव्यू दे दिया। एनएचडी ने इनके हुनर को पहचानते हुए इन्हें दाखिला भी दे दिया। हिमानी को पता था कि ये बात जब उनके घर वालों को पता चलेगी तो वहाँ काफ़ी हंगामा होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। देहरादून अपने घर वापस पहुंचकर जब हिमानी ने घर वालों को बताया कि वो अमेरिका नहीं जाएंगी बल्कि थिएटर की पढ़ाई करने एनएचडी दिल्ली जाएंगी, तो उन्हें जोर का झटका लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी उनसे ये सब कह रही है। हिमानी के घर वालों ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो अमेरिका जाकर पढ़ने का मौका ना छोड़ें, लेकिन हिमानी थिएटर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। खुद हिमानी के पिता ने उनसे कहा कि तुम पहले अमेरिका हो आओ, उसके बाद अगर थिएटर करने का दिल करे तो फिर ज़रूर कर लेना। लेकिन हिमानी ने अपने पिता से कह दिया कि वो अपने जीवन में किसी तरह का पछतावा नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अभी थिएटर को ज्वाइन करेंगी। आखिरकार पिता ने अपनी बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया और रिश्तेदारों के तमाम विरोध के बाद भी बेटी को NSD ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी। NSD से पास आउट होने के बाद हिमानी दूसरों की तरह खुद को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं ले गई। इन्होंने फैसला किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर ही किया करेंगी। अपने जानकारों से ये कहती भी थी कि ये कभी बॉम्बे नहीं जाएंगी, दिल्ली में रहकर ही थिएटर किया करेंगी। चूंकि हिमानी घर से कोई पैसा अपने लिए नहीं लेना चाहती थी तो उन्होंने NSD की रेपेटरी में नौकरी शुरू कर दी। उस जमाने में इन्हें 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उन 600 रुपये में 200 रुपये ये कमरे का किराया भरा करती थी और बाकी बचे 400 रुपये में ये अपना सारा खर्च चलाती थी। अगले 10 सालों तक हिमानी NSD रेपेटरी से जुड़ी रही। यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि NSD में जब ये पढ़ रही थी तो इन्हें बाहर जाकर थिएटर या कोई काम करने की परमिशन नहीं थी, मगर ये अपने एक दोस्त के साथ दूरदर्शन के शो कृषि दर्शन में छिपकर काम करती थी। इससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इसी दौरान ही इन्हें अब आएगा मजा नाम की फिल्म मिली, जो इनके करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो फारूक शेख थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे आलोक नाथ। चूंकि आलोक नाथ इनके सीनियर रह चुके थे तो उन्होंने ही इन्हें वो फिल्म ऑफर की थी। इसके बाद इन्होंने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काम किया। ये फिल्म अरुंधति रॉय ने बनाई थी। कमाल की बात ये है कि इस फिल्म में अरुंधति रॉय ने खुद भी एक्टिंग की थी और आज के दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस फिल्म में नजर आए थे। ये फिल्म TV पर रिलीज की गई थी, लेकिन हिमानी घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बनी दूरदर्शन के शो हमराही से। हमराही में हिमानी के निभाए देवकी भौजाई के किरदार ने इन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। हालांकि हमराही से पहले भी हिमानी यात्रा और फिर वही तलाश जैसे TV शोज कर चुकी थी, लेकिन देवकी भौजाई के रोल में हिमानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। यहां आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि दूरदर्शन के पहले शो हम लोग में छुटकी के रोल के लिए भी हिमानी भट्ट को अप्रोच किया गया था, पर चूंकि उन दिनों हिमानी सिर्फ और सिर्फ थिएटर करना चाहती थी तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। आगे चलकर हिमानी TV का एक बहुत बड़ा नाम बनी। बात अगर इनके फिल्मी करियर की करें तो पहली फिल्म के कुछ सालों बाद हिमानी ने श्याम बेनेगल की सूरज का सातवां घोड़ा, 2 साल बाद दिलवाले और फिर धनवान फिल्म में काम किया। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म मम्मो में इन्होंने अनवरी का यादगार रोल निभाया, लेकिन इसी साल इनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसने इन्हें कमर्शियल फिल्मों की एक ज़बरदस्त कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर दिया। ये फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शंस की हम आपके हैं कौन। रजिया आपा के रोल में हिमानी को हर किसी ने पसंद किया। ये रोल हिमानी को मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल शुरू में हिमानी मुंबई नहीं जाना चाहती थी। अब तक ज्ञान शिवपुरी से ये शादी कर चुकी थी और हिमानी भट्ट से हिमानी शिवपुरी हो चुकी थी। इनका एक बेटा भी हो गया था। इनके पति एक्टर ज्ञान शिवपुरी ने इन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया था। मुंबई में एक TV शो में ज्ञान शिवपुरी और हिमानी शिवपुरी दोनों को काम मिला था। बेटे को हॉस्टल में छोड़ ये दोनों मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर दोनों ने शो में काम किया, लेकिन जब वो शो ख़त्म हो गया तो इन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। इन्हें काम की ज़रूरत थी, लेकिन इनके पास काम नहीं आ रहा था। इसी दौरान सूरज बड़जात्या हम आपके हैं कौन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हिमानी शिवपुरी को एक नाटक में हज्जो का किरदार निभाते हुए देखा था। सूरज ने हिमानी को फोन किया और अपनी फिल्म में रजिया का किरदार ऑफर किया। हालांकि शुरू में सूरज को लग रहा था कि चूंकि हिमानी इतनी बड़ी अदाकारा हैं तो शायद वो ये रोल निभाने से इनकार कर देंगी, लेकिन चूंकि हिमानी को उन दिनों काम की बेहद ज़रूरत थी तो उन्होंने इस मौके को तुरंत लपक लिया। हम आपके हैं कौन के साथ ही हिमानी शिवपुरी का फिल्मी करियर भी चल निकला। अपने अब तक के फिल्मी करियर में हिमानी शिवपुरी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। 150 से भी ज़्यादा फिल्मों का ये हिस्सा रह चुकी हैं। इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में ये कम्मों के रोल में नजर आई थी। हिमानी शिवपुरी को ये रोल मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों हिमानी जी टीवी के शो हसरतें की शूटिंग कर रही थी। एक दिन उनके पास आदित्य चोपड़ा का फोन पहुंचा और उन्होंने इन्हें बताया कि वो अपनी एक फिल्म में इन्हें कास्ट करना चाहते हैं। हिमानी ने आदित्य चोपड़ा को बांद्रा में अपने शूटिंग लोकेशन पर बुला लिया। आदित्य चोपड़ा वहां पहुंचे और शूटिंग ब्रेक्स में वो हिमानी को DDLJ की कहानी सुनाते रहते। फिल्म की कहानी जब इंटरवल तक पहुंची तो हिमानी ने आदित्य चोपड़ा से कहा कि वो ये फिल्म कर रही हैं। आदित्य चोपड़ा ने हैरान होते हुए इनसे पूछा कि अभी तो आपके रोल तक कहानी पहुंची ही नहीं, आप बिना अपना रोल जाने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह रही हैं, बाद में मुकर तो नहीं जाएंगी। हिमानी ने कहा कि फिल्म की कहानी में बहुत दम है, इसलिए वो इस फिल्म को ज़रूर करेंगी। फिल्म रिलीज हुई तो हर किसी को कम्मो बुआ का रोल बहुत पसंद आया। फिल्म में इनके कुछ ही सीन्स थे, लेकिन हिमानी शिवपुरी उन कुछ सीन्स में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही। फिल्म में आपने हिमानी शिवपुरी को अनुपम खेर के साथ रोमांस करते हुए देखा होगा। पहले फिल्म की कहानी के मुताबिक फिल्म के आखिर में कम्मो और अनुपम खेर भी एक दूजे के साथ हो जाते हैं, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा कोई सीन नहीं आया। और तो और, फिल्म के पूरे क्लाइमैक्स में हिमानी शिवपुरी नज़र तक नहीं आई। इसकी वजह ये थी कि उन्हीं दिनों हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था और हिमानी शिवपुरी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले पाई थी। हिमानी शिवपुरी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनके पति के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जान ही चुके हैं। ज्ञान शिवपुरी से इनकी मुलाकात NHD में हुई थी और वहीं पर इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है कात्यायन। हिमानी शिवपुरी के पति ज्ञान शिवपुरी गुजरे जमाने के नामी एक्टर ओम शिवपुरी के छोटे भाई थे, यानी मशहूर अदाकारा सुधा शिवपुरी हिमानी शिवपुरी की जेठानी थी। हिमानी शिवपुरी अब 62 साल की हो चुकी हैं। वो अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं। वो अपने होम टाउन देहरादून में हर साल एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन करती हैं। 2016 में हिमानी शिवपुरी को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस्सा TV भी फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।